الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے: کیا آپ نے کل کی مجلس میں فتنوں کے بارے میں کچھ اختصار کے ساتھ فرمایا تھا؟ کل آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرائع ایسا پیدا فرمائے ہیں جن کے استعمال سے انسان ان فتنوں کو پہچان لیتا ہے، لیکن کل آپ نے پھر ان ذرائع کی تفصیل نہیں فرمائی کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، ان کی کچھ تفصیل فرما دیں. فتنہ کے بارے میں کل بات شروع ہوئی ہے کہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سچ اور جھوٹ ملا ہوتا ہے، حق اور باطل ملا ہوتا ہے. لہذا حق کو باطل سے جدا کرنا اور باطل کو حق سے جدا کرنا، یہ اصل میں بنیادی مقصد ہے، کیونکہ باطل کی وجہ سے حق کو باطل سمجھنا اور حق کی وجہ سے باطل کو حق سمجھنا، یہ فتنہ ہے دونوں طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه، وہ ارن الباطل باطلا ورژکن اجتنابہ. اے اللہ، مجھے حق حق دکھا دے، اس کے تباہ کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل باطل دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بالکل یہی بات ہے کہ حق کو باطل سے جدا کرنا اس میں مقصود ہے. تو سب سے پہلے بات جو آتی ہے، میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ بازار میں آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نمبر ایک، چیز کا ملنا مشکل ہو گیا ہے، نمبر دو چیزیں، نمبر تین چیزیں، نمبر چار چیزیں، وہ بالکل اسی صورت کی آتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نمبر دو ہوتا ہے یا نمبر تین ہوتا ہے وہ نمبر ایک سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، یا بعض دفعہ مضبوط نظر آتا ہے، اور جو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو جان سکتے ہوتے ہیں، اور جو نہیں صحیح سمجھ سکتے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ غلطی کر جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض پلمبر ملے ہوتے ہیں دکانداروں سے، دکانداروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹیکنیک بڑا سادہ ہے کہ وہ آپ کو ایک دکان پر لے جائیں گے جہاں ریٹ آپ کو مل جائے گا، پھر اس میں آپ کو اپنے مقصد کے دکان پر لے جائیں گے، اس میں کچھ چیزوں کا ریٹ اس سے کافی کم ہوگا، تو آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہے. تو جس وقت اسٹیمیٹ بنے گا تو وہ اچھا خاصا بنے گا، کیونکہ ظاہر اس میں دوسری چیزوں میں بڑھائی ہوگی. تو ایک طرف جو پلمبر ہے جو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ نمبر ایک یہ ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو دکاندار ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو صحیح چیز نہیں ملے گی. تو اب اس سے مطلب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح لوگوں تک پہنچ، کہ وہ جانتے ہوں، یہ کتنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ آپ خود تو جان نہیں سکتے اور نہیں معلوم کر سکتے، تو جو معلوم کر سکتے ہیں ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے. तो जो सही होंगे वो आपको सही बात बता सकेंगे। अब जो सही नहीं होते हैं वो असल में क्या करते हैं, वो आपके ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक बात बताते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है। लिहाजा आपका जी ललचाएगा और कहेंगे कि यही बात सही है। अब यहाँ पर जो नक्श है वो हमारे अंदर है, उसका जो नक्श है वो तो अपनी जगह पर है, वो तो फितीन है, लेकिन हमारी नफ्स की जो इस्लाह नहीं हुई तो उसकी वजह से वो मलमसाजी उसके लिए कामयाब हो गया, क्योंकि अब वो मेरे सामने गलत चीज़ को सही चीज़ बनाकर पेश कर सकते मेरे नफ्स के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसका मतलब आपकी नफ्स की जो ख्वाहिशात है ये काबू करना, ये इसके लिए असल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं कर सकते तो फिर कोई भी हमें धोखा दे सकता है। तो जो ज़राए हैं इनमें ज़ाहिर दो किस्म के ज़राए होंगे, एक ज़रिया अक़ल का है और एक ज़रिया क़ल्ब का है पहचानने का। लेकिन ये जो पहचान है वो हमारी नफ्स की हालत पर मुनहसर है, मतलब हमारी नफ्स की हालत पे हमारी अक़ल और हमारी नफ्स की हालत पर हमारे क़ल्ब ये सही फैसला कर सकेगा, अगर हमारे नफ्स इसके लिए तैयार होगा। तो गया फिर तीनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो गई। अब अकल की जो चीज़ है उसमें हम यानी इल्म भी शामिल कर लेते हैं कि हमारे पास इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सी चीज़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। लेकिन ये हमारा इल्म, इसका फहम ये तक्वा पर मुनहसर है और तक्वा दिल में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इरशाद फरमाया है, इस्तफ्त कल्बक इस्तफ्त नफ्सक सलासन, ये तीन दफ़ा फरमाया कि जो बुराई है वो ये जो तुम्हारे नफ्स के अंदर यानी तुम्हारे दिल के अंदर खटक पैदा करे। हाँ जी, अब ये एक बहुत बड़ा गुर है। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसा करता है कि जब किसी मुफ्ती के पास जाता है तो मुफ्ती के सामने सवाल ऐसा डिज़ाइन कर लेता है कि मुफ्ती उसके ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक जवाब देता है और ये अपने आप को मुतमैन कर देता है कि ये तो मुफ्ती का जवाब है, हालांकि मुफ्ती का जवाब नहीं होता, ये तो उसने मुफ्ती के मुंह में नवाला दिया। तो जो आपने उसके मुंह में नवाला दिया है उसके मुताबिक वो बात करेगा। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, इस वजह से मुफ्तियों ने भी ये लिखना शुरू किया, बसूरत मसूला, बसूरत मसूला मतलब ये कि जो सवाल किया गया उसके मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ। मिसल मीरासी की बात लो, अब मुफ्ती को जितने वरसा का बताएंगे आप तो उन्हीं में बता सके जवाब दे सकेगा। तो अगर आप सही बात नहीं बताएंगे, मतलब दरमियान में वरसा कुछ गलत बता देंगे तो मुफ्ती क्या करेगा, मुफ्ती को कश्फ तो नहीं होता कि मतलब जो है ना वो मालूम कर लेगा आपके कितने वरसा जिंदा है। तो ये मतलब गोया कि इस वजह से फरमाया इस्तफ्त कल्बक अपने दिल को अपने दिल से पूछो, इस्तफ्त नफ्सक अपने नफ्स से पूछो। उसकी वजह ये है कि आपका दिल और आपका नफ्स सही बात जानता है, नफ्स उस सूरत में जब वो नफ्स मुतमैन हो और कल्ब उस सूरत में जब कल्ब सलीम हो। वरना फिर ये होगा कि मेरा दिल चाहता है, अक्सर यूँ कहते हैं मेरा दिल चाहता, दिल नहीं चाहता, नफ्स चाहता होता है। नफ्स, दिल उसका तर्जुमान होता है, नफ्स चाहता है, दिल उसका तर्जुमान होता है, तो वो वाली बात तो नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान को पता होता है यानी कि ये बात तो मैंने इस तरह की है, लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं करता, तो यहाँ पर मसला होता है। तो इस वजह से हमें जो ज़राए हैं वो ये है कि नंबर एक, सही लोगों तक पहुँचना, या जो सोबत सालहीन, या जिनसे हम मतलब हम सीखना चाहते हैं तो वो सही लोग हों, किताबें भी हम सही लोगों की पढ़ें, हाँ जी, ताकि हमें गलत बात गुमराह ना कर सके। मेरे पास एक शख्स आया, वो इंजील बरनबास ले आया और कहा कि इंजील बरनबास जो है ना, ये उन इंजीलों में जिसमें बहुत कम तारीफ हुई है, और यूँ लगता है जैसे किसी सूफ़ी ने लिखा हो, मतलब इसमें वही बातें। तो मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है। अलबत्त इतनी बात मुझे है कि इस पर इत्मीनान नहीं है, मतलब ये कि इसमें मुमकिन है तारीफ। अब ये लफ्ज़ मुमकिन ही भी मेरे लिए काफ़ी है, या जब मुझे पता है कि इसमें तारीफ हो सकती है, हो चुकी हो, मुमकिन है, इस सूरत में इस पर मैं अमल नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मुझे बात बात पे कटका लगे रहेगा कि कहीं इसमें तारीफ ना हो चुकी। दूसरी बात, मेरे पास ऐसी किताब मौजूद है जिसमें कोई तारीफ नहीं हुई, इस पर मैं कसम खा सकता हूँ, इन कुरान मौजूद है, फिर हदीस शरीफा, वो इनके पूरा एक ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है जिसमें गलत चीज़ को अलहदा कर किया जाता है, या कमज़ोर चीज़ को। फिर इसकी तशरीह करने वालों में से ऐसा नज़रात हैं जिन पर मुझे इत्मीनान है, मसलन मौलाना शफी तानवी रहमतुल्लाह, मिसाल मैंने एक की थी, बाकी तो ज़ाहिर बहुत सारे हो सकते। तो मैंने कहा कि अब उनकी किताबें मैं सारी उम्र पढ़ूँ ना तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, कम अज़ कम मुझे इतना इल्म है, मैं अगर सारी उम्र पढ़ता रहूँ तो तानवी रहमतुल्लाह की किताबें मैं ख़त्म नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि सही है, तो मैं इन किताबों को क्यों ना पढ़ूँ जिस पर मुझे इत्मीनान है, और जितना मेरे पास टाइम है उसके हिसाब से मैं इनसा इस्तेफादा करता रहूँगा तो मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर मैं ऐसी चीज़ को क्यों शुरू कर लूँ जिसमें इम्कान है ख़ता का, ऐसी चीज़ों को क्यों शुरू करूँ। वो मुझसे नाराज़ भी हो गया, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने आप को रिस्क पर नहीं डाल सकता। तो ये बुनियादी बात होती है कि आप रिस्क फैक्टर कितना समझते हैं, क्योंकि रिस्क जो होता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से ऐसे लोगों के पास जाना जिनके बारे में आपको इत्मीनान हो। दूसरी बात कि अपने ऊपर मेहनत, फ़र्ज़ैन दर्जे का इलम कम अज़ कम हो जिसमें अकायद का इलम भी आ जाता है, और शिर्क और बिदत से बचने का भी इसमें इलम आ जाता है फ़र्ज़ैन, तो ये इलम हमारे पास हो। दूसरी बात यह है कि इतनी तकवा हमारे पास हो कि उस तकवा के ज़रिए से हम सही चीज़ों को चुनें और गलत चीज़ों को हाथ न लगाएं, हाँ जी, ये मतलब होना चाहो। और ऐसा नफ्स हमारे पास मौजूद होना चाहिए जो सही बातों को माने और गलत बातों से इनकार करे। बस ये असल की मोटी मोटी बातें, बाकी तो तफसीलात हैं, तफसीलात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं जिसके ज़रिए से हम इन फितनों से बच सकते हैं। अब देख लें, दज्जाल जो है सबसे बड़ा फितना है, ये तो है फरमाया, दज्जाल सबसे बड़ा फितना है, यकीनी बात, और दज्जाल का खुरूज भी यकीनी आएगा, और उस वक़्त उसके पास जो ज़राए होंगे वो हमारे नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे, और उलूम को उस वक़्त इतना ज़्यादा गड़बड़ किया जाएगा कि आपको सही बात तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। कि आप सही बात आखाज कर सकें। इतना यानी जिसको कहते हैं उसके अंदर गलत बातें मिलाई गई होंगी। तो ऐसी सूरत में फिर आपके बचने का ज़रिया क्या होगा? जो उसके मुकाबिल है रूहानियत का मरकज़ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उसके साथ जमा होना, उसके साथ उसके उस तक पहुँचना। इस वजह से आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बर्फ़ के तेव पिसलना भी पड़े उसकी बैत के लिए जाने के लिए तो उस तक पहुँचो उसे बैत कर, क्योंकि उस वक्त बचने का बहुत बड़ा सोर्स होगा कि सही लोगों की मतलब यह मरकज़ होगा। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक पहुँचना ये बात होगी। फिर उसके लिए जो मेहनत और मशक्क़त है वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए नफ्स का साथ देना ज़रूरी है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त भी हमारे पास जो बड़ा सोर्स होगा बचने का वो सोहबत सालेह होगा, वरना फिर खलवत है, वरना फिर खलवत है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहदा जो है यानी खलवत वो मजलिस सू जली सू से अच्छा है, और जली सालिस जो है ये वहदा से अच्छा है। इस वजह से अगर वो नहीं मिलता तो फिर खलवत है। फिर फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि बकरी जो है बकरी इंसान की सबसे बड़ी कीमती सरमाया होगा, जिसको लेकर वो पहाड़ के एक कोह से दूसरे कोह तक जाएगा और पानी की जगह तलाश करेगा ताकि अपने ईमान को बचाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल असाबे काफ है। असाबे काफ ने कोई जहाद नहीं किया था, उनने अपने ईमानों को बचाया था और उस पर अल्लाह ताला ने इतना ऊँचा मुकाम अता फरमा दिया, अपने ईमानों को बचाया। तो फिर इसका मतलब यह है कि यानी हम लोगों को दो बड़े मिसालें हैं, एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, एक जो है ना मतलब असहाबे काफ। तो इसके लिए हमें अपने ईमानों को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह जल्ला शानहु हम सबको तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के फितनों से महफूज फरमा दे। वम्मा अलैना बला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना तौबा रहीम। اللهم أردنا حق الحق وارزقنا اتباعه وأردنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا.